अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोरफायरियाज को। सो पोरफायरियाज इज़ वन ऑफ द फोटो सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स। सो इसके जो फीचर्स हमें शॉर्ट केस में देखने होंगे ना, या तो हमें कमांड होगी एग्जामिन द फेस एंड डू द रिलेवेंट, या हैंड्स की होगी, क्योंकि यही फोटो डिस्ट्रीब्यूटेड लीजन्स जो होते हैं वो इन एरियाज़ पे प्रीडोमिनेंटली हमें मिलते हैं, और उसके बाद जो है ना वो इन्हीं एरियाज़ को ही हमने देख के इसमें अपनी फाइंडिंग्स पिक करनी होंगी। तो अगर हैंड की कमांड होगी या फेस की कमांड होगी, दोनों के अंदर प्रीडोमिनेंटली फोटो एक्सपोज स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसमें या तो हमें टेंस ब्लिस्टर मिल सकता है, या इरोजन मिल सकता है, या फिर वो ही इरोजन ही लो के स्कारिंग के साथ हमें मिल सकता है, माइलियाज मिल सकते हैं, और इसके अलावा इसमें हमें स्क्लेरोडर्मोइड चेंजेस मिलेंगे, जिसमें हमें स्कारिंग इन द और बैकग्राउंड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये जो फाइंडिंग्स है ना, ये हमें हैंड्स पे भी मिलेंगी और फेस पे भी मिलेंगी, ओवरऑल फेस के ऊपर या हैंड्स पे। उसके साथ क्या होगा, हाइपर ट्राइकोसिस। अगर फेस पे है तो मेलार हाइपर ट्राइकोसिस होगी, और उसके अलावा जो मैक्सिलरी एरियाज है उसमें भी मिल सकती है, और इसके अलावा मैक्सिला को हमने पैल्पेट करके भी देखना है, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन में मिलती है मैक्सिला की, तो उसके लिए हमने पैल्पेशन करनी है। हैंड्स पे भी इसी तरह जो डॉर्सम ऑफ द हैंड्स होंगे या फोर आर्म्स, जहाँ जहाँ तक वो एक्सपोज एरियाज होते हैं सन पे, उस पे हमें इसी तरह की ब्लिस्टर्स, इरोजन, स्कारिंग, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, स्क्लेरोडर्मोइड चेंजेस और माइलियाज मिलेंगे। तो जो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा है, उससे जो बिल्कुल सिमिलर होता है ना, वो होता है सूडो पोरफायरिया। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो सूडो पोरफायरिया होता है, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, जो ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड है, उसमें हमें ना तो हाइपरट्राइकोसिस मिलती है, ना ही स्क्लेरोडर्मोइड चेंजेस मिलते हैं, तो वो रूल आउट करते थे सूडोपोरफायरिया को। अब अगर हमें हैंड्स की कमांड मिलती है, तो फिर हम पहले टॉर्च और फिर हैंड लेंस के साथ यही फीचर्स हम देखेंगे, नेल्स को अच्छी तरह देखेंगे, जिसमें हमें ओनिकोलिसिस और लॉस ऑफ द नेल्स या ओनिकोमेडेसिस मिल सकती है, डिसकलर्ड नेल्स, और उसके अंदर जो जो फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, क्योंकि क्रॉनिक इनफ्लेक ब्रेकिंग हो रही है स्किन के अंदर बिकॉज ऑफ द सन, तो उससे जो है वो ये हमें सारे फाइंडिंग्स मिल सकते हैं। ओनिकोलिसिस, ओनिकोमेडेसिस ये हमने नहीं बोलना, और डिसकलर्ड होंगे। पर जो भी स्कार्स होंगे, उनको हमने पिंच एंड स्क्वीज करके देख लेना कि एट्रोफिक स्कारिंग है, टू डायरेक्शन में मूव करके देख लेंगे, माइलियाज को हाथ लगा के देख लेंगे, इंटरडिजिटल स्पेसेस के अंदर और फोर आर्म्स के ऊपर हम देखेंगे कि कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, और फिर उसके बाद पाम्स पे भी देख लेना है अच्छी तरह, पल्सेस देख लेनी है, अगर ना भी किया कोई बात नहीं है, तो फिर ये हमारी हैंड की एग्जामिनेशन कम्प्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ऊपर आएंगे फेस के ऊपर, अगर हैंड की कमांड है तो फेस देखना है, फेस की कमांड है तो हैंड्स एंड फीट देखने हैं, क्योंकि यही सन एक्सपोज एरियाज है। फिर फेस के ऊपर हमने यही चेंजेस देखने हैं जो हैंड्स पे देखे थे, ये सारे फाइंडिंग्स होंगी। एंड एडिशन टू दिस, हमने इसको ईयर्स में भी देखना है, स्कैल्प पे, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैल्प और आईब्रो और आईलैशेस की जो है ना, वो उसमें स्कारिंग एलोपेशिया में मिल सकता है, ये फाइंडिंग हमने पिक करनी है। आईज़ के अंदर हमने देखना है कि कंजंक्टिवाइटिस या कंजंक्टिवल स्कारिंग, कैरेटाइटिस, कोई कॉर्नियल अल्सर है, फोटोफोबिया है, ये हमने आईज़ में फाइंडिंग्स देखनी है। ईयर्स के अंदर यही जो स्किन के चेंजेस थे वो हमने देख लेने हैं, और नोज़ पे जो है वो म्यूकोज़ा के अंदर भी, और ओवरऑल नोज़ के ऊपर भी हाथ लगा के देख लेना है कि उसमें जो उसकी वो है कार्टिलेज, वो तो अफेक्टेड नहीं है। फिर उसके बाद ओरल कैविटी के अंदर जो है ना, टीथ पे अपना फोकस रखना है कि टीथ जो है वो डिसकलर्ड मेलफॉर्म टीथ है, यानी फिर वुड स्लैम का भी हम कह देंगे कि आई वुड लाइक टू डू द वुड स्लैम एग्जामिनेशन, जिसमें हमें रेड फ्लोरेसेंस नज़र आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद फेस पे जो हाइपर ट्राइकोसिस के टिपिकल एरियाज़ हैं, यानी बाई टेम्पोरल और मैक्सिला, और मैक्सिला को पैल्पेट करके देख लेना। बाकी स्कैल्प पे भी ये फाइंडिंग्स हमें मिल सकते हैं, और इसके अलावा स्कारिंग एलोपेशिया मिल सकते हैं। दिस कम्प्लीट्स एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को हमने नेक और अपर ट्रंक में भी देख लेना है, वो एरियाज जो सन से एक्सपोज होते हैं वो उनमें हमें ये चेंजेस मिल सकते हैं। देन एक्सटेंडिंग द एग्जामिनेशन, इसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल पैल्पेशन फॉर लिवर एंड स्प्लीन, क्योंकि हमें पता है पोरफायरियाज के साथ लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या लिवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा वर्स होता है, और साथ में किडनी पैल्पेशन हमने कर लेनी है, एंड आस्क फॉर द एग्जामिनेशन में जेनिटेलिया एंड पीडियल एडिमा चेक कर लेना। पीडियल एडिमा का नहीं मुझे समझ आया कि क्यों किया। तो ये ओवरऑल पोरफायरिया की एग्जामिनेशन है, ठीक है। बाकी थियोरेटिकली हमें पता है कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इट इज़ रिलेटेड टू कंजेनिटल एथोपोटिक पोरफायरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एंजाइम इज़ यूरोपोरफायरिनोजन 3 को सिंथेज एंजाइम लीडिंग टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ यूरोपोरफायरिन 1, कॉप्रोपोरफायरिन 1 इन द यूरिन एंड फीसेज रिस्पेक्टिवली, एंड आरबीसीज में भी हमें फ्री या फिर जिंक बाउंड प्रोटोपोरफायरिन लेवल्स हमें रेस्ड मिल सकते हैं। प्लाज्मा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक पीक जो है वो 16 to 620 नैनोमीटर है। अब मेन वो है कि हाउ यू मैनेज दिस केस, या तो हमने इन्वेस्टिगेशंस का बता दिया ना कि जब भी पोरफायरिया की का कोई केस सस्पेक्टेड है उसमें हमने ज़रूर यूरिन के अंदर पोरफायरिन लेवल्स चेक करने होते हैं। वो रेस्ड मिलेंगे तो फिर हमारे पास सस्पिशन वो होगी और फिर आगे के इन्वेस्टिगेशन हम कन्फर्म करने के लिए करेंगे कि कौन सा टाइप है। अब अगर कंजेनिटल एथोपोटिक पोरफायरिया तो वो तो बर्थ से स्टार्ट होता है ना, तो इसी वजह से कोई यंग बच्चा होगा, लेकिन पोरफायरिया क्यूटेनियस टांडा की चेंजेस जो है वो एडोलेसेंस ऑनवर्ड्स होती हैं, या अगर वो फैमिलियल केस है एचईपी वाला तो उसमें फिर हमें अर्लियर ऑनसेट मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसमें जो है ना वो इतनी सिवियर चेंजेस नहीं होंगी। अच्छा, हैंड की एग्जामिनेशन में एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी कि इसके अंदर जो है ना अगर वो गंतर है तो उसमें हमें जो डिस्टल ओनिकोलाइसिस के अलावा एक्रोस्टिलेसिस भी होती है, तो उसके अंदर हमें फिंगर जो है वो उसमें कोई एरियाज लॉस भी हो सकते हैं, तो वो उस पर भी हमें कमेंट करना होगा। ओके, तो इन्वेस्टिगेशंस में यूरिन पोरफायरिन लेवल, फिर उसी को फीसेस में कंफर्म कर लेंगे, आरबीसीज में कर लेंगे, प्लाज्मा स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्रिक पीक, इसी पे हमारी डायग्नोसिस बन जाएगी। फिर उसके बाद एक और इन्वेस्टिगेशंस क्या है कि वो हम इसमें बायोप्सी कर सकते हैं, जिसमें हमें सब एपिडर्मल स्प्लिट, फेस्टूनिंग, सेल पोर जो है वो ब्लिस्टर मिलता है, और उसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग हमें नज़र आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, जो कि टिपिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेवल पर होगी जहाँ पर टाइप 4 कोलेजन होता है। उसी के अलावा इसमें पैस्टिन करके देख सकते हैं, जिसमें हमें जो ज़्यादा रीड्यूप्लिकेशन है या वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे और अराउंड द ब्लड वेसल्स नज़र आ सकती हैं। फिर ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है वो जनरल मेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन प्रोटेक्शन एडवाइस करें, सन ब्लॉक एडवाइस करें, सन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, हैट्स, फुल स्लीव क्लोथ्स, और इसके अलावा अवॉइड द सन एज मच एज़ पॉसिबल, जो मिड डे सन होता है उसको अवॉइड करना है। साथ ही उसके बाद फिर हम बीटा कैरेटीन दे सकते हैं एडल्ट्स में 180 mg पर डे एंड बच्चों में 90 mg पर डे। देन जो गंतर डिजीज़ है ना उसकी टिपिकल जो स्पेसिफिक वो है ट्रीटमेंट, वो ये होती है कि हमने इसके अंदर ना हाइपर ट्रांसफ्यूजन करना होता है टू अवॉइड द ट्रिगरिंग ऑफ हीम सिंथेसिस। जितना हीम सिंथेसाइज होगा उतना, क्योंकि यूरोपोरफायरिनोजन 3 को सिंथेसिस एंजाइम तो नहीं होगा, तो उसके जो पहले वाले प्रोडक्ट्स होंगे वो अक्यूमुलेट होते जाएंगे और ये वर्स होगा। तो इस वजह से हमने क्या करना है, हाइपर ट्रांसफ्यूजन करनी है, और साथ ही हमने आयरन डिपोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए डेस्फ्रॉक्सामिन दे देना है, और जो उसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। फिर अगर उसके ऊपर इरोजन्स वगैरह हैं, उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन है, अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर लो, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग में हमने बताना है कि क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है तो इसमें 25% चांस है कि बच्चों में डिजीज़ आ सकती है। प्रीनेटल डायग्नोसिस इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और जीन थेरेपी के जो है ना वो ट्रायल्स चल रहे हैं इसमें।